हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दीवा वर्तिका के सिलसिले में बात करने के लिए समय से मिलने आई हुई की। उसने सोचा था कि वो खाना खाने के बाद इस बारे में बात करेगी। उससे पहले वो माहौल को हल्का रखना चाहती थी। समय इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन समय ने पहले ही बता दिया था कि वो दीवा के यहाँ आने का कारण जानता है। समय की इस एक लाइन से वहाँ का माहौल काफ़ी गंभीर हो गया था। अब दीवा को किसी तरह की फॉर्मैलिटी करनी या बात को घुमा फिरा कर करने की ज़रूरत नहीं थी। दीवा ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम आगे बढ़ रहे हो। मुझे लगा ही था कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तभी मैं बात करना चाहता था। दीवा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, समय ने सीधे सीधे कहा। जैसा कि दीवा को डर था, समय वर्तिका को कभी हाँ नहीं कहने वाला था, वही हुआ। हालांकि आर्यांश ने यही समझाया था कि श्रेष्ठ और वर्तिका एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर दीवा को लगा कि समय और वर्तिका भी एक अच्छा कपल हो सकते थे। वैसे भी श्रेष्ठ ने अब तक अपनी सगाई तोड़ी नहीं थी और वर्तिका समय में इंटरेस्ट दिखा रही थी। लेकिन समय, मैं आर्यांश से प्यार करती हूँ, अगर हम दोनों कभी अलग नहीं हुए तो क्या तुम पूरी जिंदगी अकेले रहोगे? दीवा ने हैरानी से पूछा। उसे समय के लिए बुरा लग रहा था। तुम मेरे नेचर को अच्छे से जानती हो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने प्यार को भूलकर किसी और के साथ खुश रहने का दिखावा करें। मैं तुम्हारी अच्छी यादों के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ और तुम वैसे भी हमेशा मेरी दोस्त बनकर रहोगी, समय ने जवाब दिया। ऊपर से वो कितना भी ठीक होने का दिखावा कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये कहते हुए तकलीफ हो रही थी। दीवा भी मायूस हो गई थी। कोई किसी को इस कदर कैसे प्यार कर सकता था? अगर उसकी जिंदगी में आर्यांश या रक्षित नहीं आए होते तो समय जैसा लाइफ पार्टनर पाकर वो सच में काफी खुशकिस्मत होती। दीवा का उतरा हुआ चेहरा देखकर समय समझ गया था कि वो गिल्ट में डूब रही है। समय ने हल्का हंसकर कहा, तुम पागल हो और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम बात करने के लिए आई। तो वर्तिका उसकी बहन है, जब मामला पूरा पता ही है तो कोशिश करना कि वर्तिका के दिल में मेरे लिए कोई इमोशंस ना ग्रो हों। दीवा ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। समय ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, क्यों ना हम ये समझ लें कि हम अभी इस रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और पहले हमारे बीच कोई बात नहीं हुई थी। दीवा ने हैरानी से समय की तरफ देखा। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता था? ये जानते हुए भी कि दीवा उसके पास कभी नहीं आएगी, समय अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। आज भी वो उसे हल्का महसूस करवाने के लिए खुद के दर्द को दबाकर बैठा था। तो डॉक्टर गोयंका, पूरे दिन बिजी रहने के बाद अपने दोस्त के साथ इस तरह आराम से लंच करते हुए आपको कैसा लग रहा है? रेस्टोरेंट आपके हॉस्पिटल के सामने है, तो ज़रूर आप यहाँ पर एक दो बार तो आई ही होंगी, समय ने हल्के अंदाज में पूछा। वैसे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले एक बार आई थी, दीवा ने जवाब दिया। वो आखिरी बार वहाँ कियाना से मिलने के लिए आई थी। थोड़ी ही देर में समय ने दीवा को कम्फर्टेबल कर दिया था। वो दोनों अच्छे से बात कर रहे थे। अगर सच में समय आगे बढ़ने के लिए तैयार होता तो वर्तिका के लिए समय से अच्छा लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ आर्यांश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके पास समीक्षा का मैसेज आया। उसके दादाजी का बर्थडे नज़दीक आने वाला था और उसे उसके लिए न्यूयॉर्क जाना था। यही वक्त था जब आर्यांश को अपने प्यार और खुद के लिए स्टैंड लेना था। कियाना से शादी करने से मना करने तक ठीक है, लेकिन क्या अभी दादाजी को दीवा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम दिल की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दीवा गोयंका, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा प्यार इस दुनिया में नहीं है। मैं तुमसे कितना भी प्यार क्यों ना कर लूं, लेकिन तुम उसकी जगह नहीं ले पाओगी। मेरे दिल से ये दर्द जाता क्यों नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं रही है और उसकी वजह तुम हो दीवा। आर्यांश अपनी कश्मकश में खोया हुआ था। वो दीवा के प्यार के चलते सब कुछ भूलना चाहता था, पर उसका पहला प्यार उस पर इस कदर हावी था कि आर्यांश चाहकर भी दीवा की गलती को माफ नहीं कर सकता था। फिलहाल आर्यांश ने यही फैसला लिया कि वो दीवा और अपने रिलेशन के बारे में अपने दादाजी से बात नहीं करेगा। उसके दीवा के साथ आगे बढ़ने के लिए पहले अपनी नफरत को भुलाना जरूरी था। आर्यांश ने अपने पहले प्यार की तस्वीर निकाली और उसे काफी देर तक देखता रहा। जब दीवा के मैसेज का नोटिफिकेशन टोन बजा तब आर्यांश को होश आया। वो अस्पताल से निकलने वाली थी। आर्यांश ने अपनी गाड़ी निकाली और हमेशा की तरह दीवा को लेने के लिए निकल गया था। वहीं अस्पताल में दीवा आर्यांश का वेट कर रही थी तो उसने देखा कि नव्या जल्दबाजी में कहीं निकल रही थी। आज उसने अस्पताल में ही चेंज कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं बाहर जा रही है। नव्या अपनी तरफ से दीवा से बचने की कोशिश कर रही थी, पर दीवा ने उसे देख लिया था। वो नव्या के पास जाकर बोली, आज कहीं बाहर जाने का प्लान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है,
सुबह जो कपड़े पहनकर आई थी वो खराब हो गए थे, जल्दबाजी में रूममेट ने यही कपड़े लाकर दिए। नव्या ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। दीवा ने आगे उससे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी नव्या अपने बर्थडे के दिन से ही अजीब बर्ताव कर रही थी और उससे दूर दूर रहती थी। दीवा ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया। वो कुछ और बोलती उससे पहले ही नव्या लेट होने का बोलकर वहां से निकल गई थी। इस बीच आर्यांश वहां पहुंच गया था। उसे देखकर दीवा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आर्यांश के पास गई और उसके होठों पर हल्का सा किस किया। तुम जब भी अस्पताल में काफी सारा टाइम बिताकर मुझे इस तरह मिलती हो तो सच में मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है, फिर मुझे दोष मत देना, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कभी तुम्हें ब्लेम किया है और तुम्हें कोई बोल भी नहीं रहा कि तुम खुद पर कंट्रोल रखो, दीवा ने नजरे झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी हरकतें हमेशा आर्यांश को बेकाबू कर देती थी। आर्यांश हल्का सा मुस्कुराया और दीवा को अंदर बैठने का इशारा किया, इससे पहले कि वो अपना काबू खोकर उसे वहीं पर किस करने लग जाता। आर्यांश दीवा को लेकर घर जा रहा था। दीवा का चेहरा बाहर की तरफ था और वो नव्या के बारे में सोच रही थी। क्या नव्या को मेरा दिया हुआ गिफ्ट अच्छा नहीं लगा, या कोई बात है जो अपने बर्थडे वाले दिन से वो मुझसे बात नहीं कर रही? कहीं वो इस वजह से तो नाराज नहीं है कि मैंने उसे पहले विश नहीं किया था? पहले जब भी लंच ब्रेक होता था वो मेरे साथ खाना खाने के लिए आ जाती थी, लेकिन आजकल वो कोई ना कोई बहाना बनाकर दूर रहती है। साफ पता चल रहा था कि अभी वो किसी के साथ घूमने जाने वाली है, और सुबह भी उसने मेरे आने पर अपनी मोबाइल स्क्रीन दूसरी तरफ कर ली थी। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो मुझे नहीं बताना चाहती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे हमारी दोस्ती में तो कोई असर नहीं आना चाहिए ना, दीवा ने मन ही मन कहा। वहीं दीवा को खोया हुआ देखकर आर्यांश ने जानबूझकर हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज से दीवा का ध्यान टूट गया था। उसने जल्दी से आर्यांश की तरफ देखा। मेरे साथ होते हुए किसके बारे में सोच रही हो? थोड़ी देर पहले अस्पताल के बाहर देखकर जितना एक्साइटेड हुई थी उतनी ही खोई हुई लग रही हो, आर्यांश ने पूछा। वैसे भी उसे पसंद नहीं था कि उसके साथ होते हुए दीवा किसी और के बारे में सोचे। बस ऐसे ही किसी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी, दीवा ने मायूसी से जवाब दिया।
और कहीं वो फ्रेंड समय अरोड़ा तो नहीं? देखो, सुबह भी उसे लेकर हम दोनों के बीच में बहस हुई थी, और अब मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक पर बात करके वापस हम दोनों के बीच में दूरियां आएं, आर्यांश ने गंभीर आवाज में कहा। वैसे भी दीवा और उसके बीच इन दिनों किसी न किसी चीज को लेकर बहस हो ही जाती थी, पहले किया ना, तो अब समय बीच में आ गया था। नहीं, मैं नव्या के बारे में सोच रही हूँ, दीवा ने सफाई में कहा। ठीक है, तो उसके बारे में भी मत सोचो। वैसे डिनर के बाद कहीं बाहर घूमने के लिए चलें? सोच रहा हूँ कि तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूं, आर्यांश ने दीवा का ध्यान भटकाने के लिए कहा। नहीं, मैं काफी थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ, दीवा बोली। मैं कौन सा तुम्हें पहाड़ खुदवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ? आजकल तुम बहुत बोरिंग होती जा रही हो। अब से हम दोनों के बीच में कभी किसी तीसरे की बात नहीं होगी। रही बात तुम्हारी थकान की, तो मैं अच्छे से जानता हूँ उसे कैसे दूर करना है, आर्यांश ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। दीवा ने उसकी बात पर हामी भरी। वैसे भी आर्यांश का कहना सच था। इन दिनों उनके बीच दूसरे लोगों के चलते वैसे भी काफी दूरियां आ गई थी। ऐसे में नव्या के बारे में सोचकर वो अपने और आर्यांश के रिश्ते को खराब नहीं कर सकती थी। दीवा ने मन ही मन निश्चय किया कि वो नव्या से कल इस बारे में खुलकर बात करेगी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच चुके थे। घर जाकर उन्होंने देखा कि सुमन माँ पोर्च पर खोई हुई सी बैठी हुई थी। हमेशा उनके आने पर वो मुस्कुराकर उन्हें गुड इवनिंग कहती थी और डिनर के बारे में बताती थी कि आज उन्होंने उनके लिए क्या खास बनाया है, लेकिन आज उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सुमन की ये हालत देखकर दीवा थोड़ी हैरान जरूर हुई थी, लेकिन आर्यांश बिल्कुल शांत था। वो जल्दी से सुमन के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, सुमन माँ चलिए अंदर चलते हैं, क्या आज आपने अपनी दवाई ली? सुमन ने नज़र उठाकर आर्यांश की तरफ देखा और कहा, कौन सी दवाई? आप आराम कीजिए, मैं लेकर आता हूँ, आर्यांश बोला और उन्हें उनके कमरे में छोड़ आया था। आर्यांश ने सुमन को कुछ दवाइयाँ दी और फिर सुला दिया था। उनके सोने के बाद आर्यांश बाहर आया तो दीवा सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ है सुमन माँ को? दीवा ने पूछा। साल के इस महीने में उनकी हालत खराब हो ही जाती है। दरअसल ये वही महीना है जब उन्होंने अपनी बेटी को खोया था। जानती हो दीवा, जब मैं सुमन आंटी से पहली बार मिला था तब उनका रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। वो किसी को अपना बच्चा समझकर उनके पीछे भाग रही थी। किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। मैं और सार्थक उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। बहुत मुश्किल से वो ठीक हुई थी, पर उनके दिमाग में इन दिनों में पुरानी यादें ताज़ा हो ही जाती हैं। वो मुझे भी अपना बच्चा समझती हैं और उन्हें अपने बच्चों की कमी महसूस ना हो, इसीलिए मैं उन्हें माँ कहकर बुलाता हूँ, आर्यांश ने सुमन के बारे में दीवा को सब कुछ बता दिया था। दीवा ने कभी नहीं सोचा था कि आर्यांश जैसा इंसान सड़क पर पड़े अनजान इंसान की मदद करेगा। वो दिखने में पत्थर दिल लगता था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। आर्यांश को आज भी वो दिन याद था। कोई सुमन को अस्पताल ले जाने का रिस्क नहीं उठाना चाहता था।
आर्यांश ने अपने पहले प्यार को रोड एक्सीडेंट में खोया था। बस यही वजह थी कि वो उन्हें इस तरह मरने नहीं दे सकता था और हॉस्पिटल लेकर गया। आर्यांश को मायूस देखकर दीवा बोली, तुमने बाहर चलने का कहा था ना, चलो डिनर भी बाहर करते हैं। सुमन माँ की जैसी हालत है, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कुछ बनाया होगा। आर्यांश ने उसकी बात पर हामी भरी। वो जानता था कि दवाई लेने के बाद सुमन अब सुबह ही उठने वाली है, इसलिए उसे वहीं पर छोड़कर उसने सिक्योरिटी गार्ड को सब कुछ समझाया और दीवा के साथ बाहर चला गया था। पहले आर्यांश और दीवा ने कुछ शॉपिंग करने का सोचा। वो मॉल के लग्जूरियस स्टोर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी दीवा की नज़र सामने मौजूद नव्या पर पड़ी, जो कि आना के साथ थी। उसे देखकर दीवा के कदम वहीं रुक गए थे और उसे एक झटका सा लगा। दीवा ने कभी नहीं सोचा था कि कियाना का सच जानने के बावजूद नव्या उसके साथ इस तरह घूमती हुई नजर आएगी। तो क्या यही वजह थी कि आजकल वो दीवा से दूर दूर रहती थी?